हम उनके पास जाते भी नहीं हैं और ना ही उनसे हमारी कोई दुश्मनी है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि ये सब करके अब क्या हासिल होगा? जो होना था हो गया। अब क्या सारी जिंदगी मातम बनाएगी, खुद को कमरे में बंद रखेगी तो क्या सब ठीक हो जाएगा? हमने भी अपना पोता खोया है, क्या हमें कोई दुख नहीं? बस उसी ने अपनी औलाद को खोया है और दुख उसे ही है। आपने अपने बेटे के बच्चे को खोया है माँ, और उन्होंने अपने बच्चे को खोया है। वही बच्चा जिसके इस दुनिया में आने के हजारों सपने बुने थे उन्होंने, जो एक झटके में टूट कर बिखर गए, जिसे जिंदगी देने के लिए वो 8 महीने तक बिना किसी शिकायत के हर दर्द हर तकलीफ को सहती रही, और अंत में भी उनके हिस्से सिर्फ दर्द आया। वही बच्चा जिसे 8 महीने अपने खून से सींचने के बाद भी वो मातृत्व के सुख से वंचित रह गई। अपनी औलाद को वो एक बार अपने सीने से नहीं लगा सकी, उसे प्यार करके अपनी ममता को संतुष्ट नहीं कर सकी। वही बेटा जिसका इंतजार करने के बावजूद वो उसे एक बार देख तक नहीं सकी। आप तो एक औरत हैं, माँ हैं, फिर भी उनका दुख, उनकी तकलीफ आपको नजर नहीं आ रही। आप उनकी स्थिति को खुद से कैसे कंपेयर कर सकती हैं? आपका बेटा आपके सामने सही सलामत खड़ा है, और उनका बेटा उनसे इतनी दूर जा चुका है कि कभी लौट कर नहीं आएगा। उनके दुख की तो कोई सीमा ही नहीं है, और बहुत अफसोस की बात है कि 3-3 बच्चों की माँ होने के बावजूद आप उनका दर्द नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि आप कुछ समझना ही नहीं चाहती। ये कैसा बैर पाले बैठी हैं आप उनसे, और क्यों? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया है उन्होंने कि आपके मन में उनके लिए इतनी कड़वाहट भर गई है? एक सांस तो छोड़िए, क्या आप इंसानियत का नाता भी नहीं निभा रही हैं? भगवान के लिए तरस खाइए उन पर। अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम अपनी जुबान से जहर तो मत उगलिए। अक्षय के चेहरे और शब्दों में गुस्से से ज्यादा अफसोस और दुख छलक रहा था। अपनी माँ के इस तरह के व्यवहार से वो बहुत आहत था। अफसोस था उसे उनकी सोच पर, और बहुत दुख पहुंचा था उनका आहाना के प्रति ये रवैया देखकर। वो हैरान भी था कि आहाना को इस हालत में देखकर भी उन्हें उस पर दया या तरस नहीं आता, इंसानियत के नाते भी उसके दुख को समझने या कम करने की कोशिश नहीं करती, बस मौका मिलते ही उसे सुनाना शुरू कर देती हैं। रूपाली जी अपने बेटे का ये व्यवहार सह न सकी और गुस्से में फुनकारते हुए वहां से चली गईं। आहाना के लिए उनके मन में कड़वाहट और बढ़ गई थी, और वजह थी कि उसने उनके बेटे को उनसे छीन लिया था। अक्षय उनके खिलाफ जाकर आहाना के साथ खड़ा था। रूपाली जी के जाने के बाद अक्षय ने गहरी सांस छोड़ी और आहाना का ब्रेकफास्ट ट्रे में लगाकर रसोई से बाहर निकल गया। मेट पहले ही बाहर जा चुकी थी। जैसे ही अक्षय ड्राइंग रूम पार करते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा, ड्राइंग रूम में खड़े आगंतुकों पर नजर पड़ते ही उसके कदम ठिठक गए। आहाना की पूरी फैमिली आज वहां मौजूद थी। उनके चेहरों के भाव बता रहे थे कि वे सब सुन चुके हैं। अक्षय के चेहरे के भाव भी पल भर को बिगड़े। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी माँ का ये रूप और आहाना के प्रति उनके व्यवहार की हकीकत कभी उसकी फैमिली के सामने आए, पर अब सब कुछ हो चुका था। अक्षय ने ठंडी आह भरी और फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए उनकी ओर बढ़ गया। उसने पहले ट्रे टेबल पर रखकर आदर सहित जयेश जी, जयंती जी के पैर छुए, दृशांत और पल्लवी को नमस्ते किया, अंतरा और निशांत के अभिवादन का जवाब दिया, फिर जरा हैरानगी से सवाल किया, आप सब अचानक इतनी सुबह सुबह यहाँ? हाँ, वो दृशांत की छुट्टी अब नहीं बढ़ सकती तो वापस जाने से पहले अनु से मिलना चाहते थे, बस इसलिए चले आए। जल्दी मिल लेंगे तो वक्त से निकल जाएंगे और शाम तक कानपुर भी पहुंच जाएंगे, जयेश जी ने सहजता से जवाब दिया। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए जयंती जी ने विनम्र स्वर में कहा, और साथ ही आपसे कुछ बात भी करनी थी हमें। मुझसे बात करनी थी? कहिए, क्या बात करनी थी? अक्षय ने सहज भाव से कहा। जयंती जी ने अभिजीत जी, दृशांत, पल्लवी और बाकी सबको देखा तो सबने उन्हें इशारे में बात करने को कह दिया। वो दामाद जी, हम सोच रहे थे कि अनु को अपने साथ ले जाएं। वो यहाँ रहेंगी तो हमें चिंता लगी रहेगी, हम यहाँ ज्यादा दिन रुक नहीं सकते, तो अगर अनु हमारे साथ चलती तो हम उनका ख्याल रख लेते। उनके इस फैसले ने अक्षय के शक को यकीन में बदल दिया था। सब सुन चुके थे वे, और कहीं ना कहीं रूपाली जी की बातों और उनके व्यवहार से आहत भी हुए थे, इसलिए अचानक ये फैसला ले लिया था उन्होंने। जहां दादी और अभिजीत जी विचलित नजर आ रहे थे, वहीं अक्षय के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए थे। शायद आपने मम्मी की बातें सुन ली, इसलिए अचानक ये फैसला ले लिया। आहाना आपकी बेटी है, आपका हक है उन पर। अगर आप उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर अगर मम्मी की बातों से आहत होकर आपने ये फैसला लिया है तो मम्मी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी बातें सुनकर आपको कैसा लगा होगा, मुझे भी समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों करती हैं, पर आप आहाना की चिंता मत कीजिए, मैं आहाना को इन सबसे दूर रखूंगा। वो मेरी वाइफ है और उनकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और जल्दी ही वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर मैं आहाना को लेकर आऊंगा आप सबसे मिलने। मैं उन्हें इस हालत में खुद से दूर नहीं जाने दे सकता, प्लीज जिस विश्वास से आपने मुझे आहाना की जिम्मेदारी सौंपी थी उस विश्वास को बनाए रखिए। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भरोसा रखिए मुझ पर। आपकी बेटी जैसे आपने मुझे सौंपी थी वैसी ही आपको वापस लौटाऊंगा। आपको कभी उन्हें यहाँ मेरे पास छोड़ने के फैसले पर अफसोस नहीं करना पड़ेगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सब करूंगा, पर आहाना को वापस पहले जैसा सामान्य करके रहूंगा। अच्छा वक्त उन्होंने मेरे साथ बिताया है तो अब उनके बुरे वक्त में उनका साथ निभाना मेरा फर्ज है। बस इस बार मेरा भरोसा कर लीजिए। अगर मैं नाकाम रहा तो ले जाइएगा उन्हें अपने साथ, मैं रोकूंगा नहीं, पर अभी उन्हें यहीं मेरे साथ रहने दीजिए। पहले ही वे अक्षय को आहाना के लिए रूपाली जी से लड़ते देख चुके थे। इस वक्त भी उसकी आंखों में सच्चे जज्बात छलक रहे थे। उसके इस आग्रह को वे ठुकरा ना सके। हमें आप पर भरोसा है, पर आहाना जिस हाल में है आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। वहां जाएंगी तो हम सब उनका ख्याल रखेंगे और शायद माहौल बदले तो वे जल्दी ठीक हो जाएं। दृशांत ने उस पर विश्वास जाहिर करते हुए संजीदगी से अपनी बात कही, जिसे सुनकर अक्षय के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। यकीनन वहां आप सब होंगे तो आहाना का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, पर अगर इस हालत में मैंने उन्हें यहाँ से जाने दिया तो मैं कभी खुद से नजर नहीं मिला सकूंगा कि जिस लड़की का हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया, जब दुख में उसका साथ निभाने का वक्त आया तो उस वचन को तोड़कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। जिस लड़की ने अकेले मुझे और मेरे पूरे परिवार को संभाला, जब उसे सहारे की जरूरत पड़ी तो अपने फर्ज से पीछे हट गया। अक्षय की दलीलों के आगे वे हार गए। आहाना के लिए उसके जज्बात सच्चे थे और आज जिस विश्वास के साथ जयेश जी ने आहाना का हाथ उसके हाथ में सौंपा था वो और मजबूत हो गया था कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही विषम हो पर अक्षय कभी आहाना का साथ नहीं छोड़ेगा। संतुष्टि भरी मुस्कान उनके लबों पर आ ठहरी थी और चेहरे पर सुकून उभर आया था। आपकी पत्नी को हम आपसे दूर नहीं करेंगे, हमें विश्वास है आप पर कि आप अनु का साथ निभाएंगे, उनका सहारा बनेंगे और उन्हें इस दुख से उबारने में सफल रहेंगे। अनु यहीं रहेंगी आपके साथ और हम इंतजार करेंगे अपनी बेटी दामाद का। उम्मीद करते हैं कि ये इंतजार जल्दी ही खत्म होगा। जयेश जी की बात सुनकर अक्षय के बेचैनी भरी निगाहों में सुकून के भाव उभर आए थे। जी पापा जी, मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा।
चलिए समधी साहब, अपनी बिटिया से मिल लीजिए, हम आप सबके चाय नाश्ते का प्रबंध करवाते हैं। अभिजीत जी ने मुस्कुराते हुए बात का सुख मोड़ा और जयेश जी ने संकोचवश उनके आतिथ्य को सौम्यता से अस्वीकार कर दिया। माफ कीजिए समधी साहब, पर नाश्ता हम करके आए हैं तो आप परेशान ना हो, हम बस अनु से मिलेंगे फिर निकलना भी है हमें। चलिए नाश्ता नहीं सही, चाय तो पीजिएगा हमारे साथ। उनके विनम्र आग्रह को वे अस्वीकार न कर सके और सर हिला दिया। अक्षय सबको अपने साथ लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। हाथ में ट्रे पकड़े वो कमरे में दाखिल हुआ और नज़र सीधे बेड पर पैर फैलाए बैठी आहाना पर पड़ी, जो सो सुनी निगाहों से शून्य में ताक रही थी। अनु, देखिए आपसे मिलने कौन आया है, अक्षय मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ, पर उसके बाद पर आहाना ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया और ना ही उसे देखा, जिससे उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। उसके साथ बाकी सब भी कमरे में दाखिल हुए, पर आहाना अब भी बुत बनी बैठी शून्य में ताकती रही। जयेश जी, जयंती जी, दृशांत, पल्लवी सबने उससे बात करने की कोशिश की, पर जाने ये कैसी चुप्पी अख्तियार की थी उसने, जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबसे नाराज है और उसने उनसे मुंह मोड़ लिया है। आहाना की चुप्पी के बावजूद सब उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, नम आंखों से भी मुस्कुराने की जद्दोजहद में लगे थे। जयंती जी उसे नाश्ता करवाने लगी, पर आहाना ने मुंह ही नहीं खोला, ये देखकर उनका मन व्यथित हो गया। उन्हें दुखी और उदास देखकर अक्षय ने प्यार से आहाना के गाल को छुआ और बेहद कोमल स्वर में बोला, अनु नाश्ता तो लीजिए, आप खाएंगे तभी तो मैं खाऊंगा ना, मेरे लिए नाश्ता कर लीजिए। देखिए माँ अपने हाथ से आपको नाश्ता करवा रही है, कुछ खाएंगी तभी तो दवाई दूंगा और दवाई लेंगी तभी आप ठीक होंगी। अक्षय ने बात पूरी की और आहाना के आपस में जुड़े लब खुल गए। सब नम आंखों से आहाना के लिए उसका प्यार, परवाह, फिक्र देख रहे थे। जयंती जी ने उसे नाश्ता करवाया, अक्षय ने दवाई दी, इतने में सबके लिए चाय आ गई। कुछ देर यहीं रुकने के बाद भारी मन से वे यहां से चले गए, पर आहाना पत्थर की मूरत बनी यूं ही बैठी शून्य में ताकती रहती थी।